ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही कुछ राजयुक्त ज्ञान की बातें सुनाई है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, पुरुषार्थ से ही ऊंच पद पाएंगे। जिसके लिए गायन भी है, चढ़े तो चाखे रस, जिसके लिए भक्ति में भी गायन करते हैं कि चढ़े तो चाखे रस और गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को जाकर के ऊंच पद पाना है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर प्रजा में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात बाबा ने कही कि यहाँ पर भक्ति करते हैं, लेकिन तुम बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान की प्रारब्ध जाकर के भविष्य में प्राप्त करते हो, वहाँ बाबा को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का नाम क्यों बाला है, उनके माँ बाप से या औरों से श्री कृष्ण का नाम क्यों बाला है। बाबा ने कहा कि जब श्री कृष्ण के मात पिता है, वो एकदम ऐसे प्योरिटी से जन्म नहीं लिया है, मात पिता उनको जन्म दे करके चले जाते हैं। जब श्री कृष्ण आता है गद्दी पर या श्री कृष्ण जन्म लेता है तो उसका नाम बाला है। तो राज भी बाबा ने बताया है, अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सत्युग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। मीठे बच्चे संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सत्युग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह योग बल से जन्म नहीं होता। माँ बाप तो इस कलयुगी दुनिया के परिवर्तन के एकदम लास्ट में होंगे, फिर श्री कृष्ण को जन्म देंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल का नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। दूसरी बात, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण है, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, खत्म नहीं चली जाती हैं, जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल अर्थात पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। किसी बात संगम पर ही श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को पढ़ाते हैं, पुकारते भी है ना, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो इससे होता है कि ये पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। पुकारना मीन्स तो जरूर कभी थे ही ना, नई पावन दुनिया थी तब तो वो पुकारते हैं। नई दुनिया पावन दुनिया थी, नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। जब बरसात आती पुराने मकान होते हैं, लीकेज होता है, कहाँ से पानी आता है, कहाँ से कुछ होता, कहाँ से ईंट टूटी, कहाँ से कुछ हो जाता है ना। तो बाबा कहती हैं बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर कब पढ़ाएंगे अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ा सकते हैं, ना उनको कहेंगे कि मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाता हूँ। वो तो भक्ति की बातें सुनाते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है। क्यों? क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगन कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों की मेहनत होती। सबसे ज्यादा मेहनत किसमें लगती है? बाबा को याद करने में इतनी नहीं, याद करने से पहले आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत होती है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी भी आत्म अभिमानी नहीं बने। क्यों मेहनत लगती? बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं, आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। अब बाप कहती है अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई जैसे हठ योग में प्राणायाम में नाक कान की एक्सरसाइज करते, वो है एक्सरसाइज। तो बाबा कहते याद में जो है ये कोई स्थूल बातें नहीं है, इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि बंद नहीं करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो, आधा कल्प से देह अभिमान में आए हुए ना। तो बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, तो बाबा को कहना पड़ता है तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है, वहां परलौकिक बाप को याद ही नहीं करते, ना उसका ज्ञान है, ना जानते हैं, ना दुख है जो परलौकिक बाप को याद करे। तो बाबा कहते हैं वहां परलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते, एक लौकिक एक परमात्मा को याद करते हैं, लौकिक और परलौकिक। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, सतयुग में एक बाप, द्वापर से दो बाप और संगम युग पर ब्राह्मणों को तीन बाप। आपको पता है निम्न शांता दादी को सदा इस बात का खुशी रहती थी कि मेरे 3 in 1 लौकिक भी यही है, अलौकिक भी यही है और परलौकिक भी उसी में विराजमान है। तो बहुत नशे से कहती थी, देखो आपके 2 हैं, मेरे 3 ही 1 में 3 हैं। तो उनको थोड़ा बहुत खुशी भी होती थी और सबको सुनाते थे तो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा कहते हैं, बाप तो वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध है, ऐसे नहीं ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य समझा नहीं सकते कि सतयुग में परमात्मा को याद नहीं करते कितना सुख रहता है। तो बाबा कहते मनुष्य न जानते हैं न समझा सकते हैं। ये है नई बात, 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम होता है तब ही बाप आते हैं, नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था, बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहती हैं क्या करो, बाप कहती हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। आज का होमवर्क बाबा क्या दे रहे हैं, आत्म अभिमानी बनो, अपने को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई भी दुख नहीं रहता है। तो बाबा बता रहे हैं वहां पर जाकर के इतने समझदार बन जाते हो, कोई भी प्रकार के दुख की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कोई ऐसी नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला, वहां है संपन्न सब कुछ है तो वहां थोड़ी कुछ मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुनिया में मांगते रहते। तो बाबा कहते हैं वहां तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई भी चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ आदि मांगते, जब भी होंगे ना कहेंगे दुआ करो, आशीर्वाद दो, भक्ति मार्ग में तो दुआ मांगते आशीर्वाद मांगते, ज्ञान मार्ग में भी कई कई ऐसे होते नए नए होते ना कहेंगे बाबा को आशीर्वाद दे, बाबा कहते रोज आशीर्वाद देता हूँ फिर भी इनको संस्कार है मांगने का, मांगते रहते हैं। इसलिए बाबा के बच्चे मांगते नहीं है, बाबा के बच्चे अधिकारी हैं, वो अधिकार स्वतः ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, बड़े बड़े रिलीजियस लीडर आते हैं कितने लोग जाते हैं कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो दुआ दे दो। यहाँ भी ऐसे कई ब्राह्मण आएंगे कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो, अरे सिर पे हाथ तो बाबा का है ना, फिर क्यों ऐसा बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि बाबा की दुआओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादी कराते हैं, बाबा तो ये काम नहीं करते, बाबा तो कभी ऐसे नहीं करते ना। बाबा कहते पवित्र बनो है ना, भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता, एक तरफ तो बहुत प्रोग्रेस भी कर रहा है और दूसरी तरफ गिरावट भी तो हो रही है ना, तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सभी हैं कलयुगी मनुष्य, जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम में है या कलयुग में। किसी को कौन हम संगम पर रखेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं बाहर वाले, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि संगम युग क्या है, कलयुग क्या, वो तो समझते कलयुग है। जब तक यहाँ ना आए तब तक समझ ना सके कि हम कलयुग में हैं या संगम युग में। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में। एक ही परिवार में होता है ना, कहाँ बच्चे ज्ञान में हैं, बच्चा कहेगा मैं संगम पर हूँ और मेरे को ये ज्ञान सुनना है, बाप कहेगा नहीं ऐसे करो, तो कोई स्त्री कहेगी हम संगम पर हैं, पति कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं, पति ज्ञान में तो पत्नी नहीं है, तो एक ही घर में कितनी बातें हो जाती है। तो बाबा बता रहे हैं एक ही घर में बच्चे समझते हैं कि हम संगम पर हैं, कुछ भी समझ ना सके तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता। अब बच्चे ज्ञान में हैं, माँ बाप ज्ञान में नहीं है, तो कितनी तकलीफ होती है खान पीने की। लेकिन बहुत पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे जो है वो तो पूरा ध्यान रखते, कुछ भी हो जाए अपने खान पान की शुद्धि भी रखते हैं। तुम संगम युगी हो शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले, देवताओं को कभी प्याज आदि थोड़ी चढ़ाते, देवताओं को सदा शुद्ध भोजन देते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी, भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, कोई भी ऐसा नहीं जो समझे कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मसु परमात्मा कह देते हैं, ऐसे ऐसे समझते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। बाबा हमेशा बताते हैं जो बाबा के बच्चे हैं देवी देवता धर्म के, कहीं पर भी हों, विश्व के किसी भी कोने में हों, तो बाबा के पास आएंगे, बस बाबा को देखा ज्ञान सुना फटाफट बाबा को पहचान लेते। देखो अभी विदेशी भाई बहनों की सीजन शुरू हो चुकी है और मधुबन में भी कितने विदेशी भाई बहने हैं। ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्लीज रेज योर हैंड, देखो बहुत है, वेलकम है, इनको स्वागत करो। और इस सीजन का पहला टर्न है और इसमें भी बहुत डबल विदेशी भाई बहने भिन्न भिन्न देशों से आ रहे हैं बाबा के घर में, वेलकम है आपका, वेलकम है। बाबा कहती हैं ज्ञान सागर तो मैं एक ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उसको भी मालूम पड़ता, दूसरों को भी मालूम पड़ता। घर में जाकर शादियां आदि करते तो छीछी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा भी जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, बाबा क्या कहते हैं कि अगर राजा बनना है तो जरूर प्रजा भी बनानी पड़े, प्रजा नहीं होगी तो राज्य किस पे करेंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इसको कहा जाता है गीता का योग। तुम राजयोग सीख रहे हो और जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाएं स्थापन हो रहे, फाउंडेशन लग चुका है, धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका, सुना, ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो कौन बनेंगे? बाबा ने कहा वो सूर्यवंशी बनेंगे। यहाँ सब सूर्यवंशी वाले हैं ना, तो हाथ खड़ा करो सूर्यवंशी। हाँ बाबा, चंद्रवंशी तो कोई है ही नहीं, चंद्रवंशी तो बाद में आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं। धर्म वाले आ रहे हैं, आते ही हैं। अपने धर्म की स्थापना करने पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट है। धर्म संस्थापक आएगा, थोड़े पहले सुनेंगे, धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होती है। तुम्हारा बीज रूप कौन है? उनका हर धर्म का बीज रूप अपना अपना धर्म संस्थापक है। तो बाबा कहते तुम्हारा बीज रूप कौन है? तुम्हारा बीज रूप है बाप। बाप आकर प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। रचयिता कौन है? एक शिव बाबा, उसको रचता नहीं कहेंगे। शिव बाबा उनके द्वारा रचना रचते, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को तो क्रिएट करते हैं ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा को क्रिएट किया और ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे सहकारी बच्चे हो, बाप आकर इनमें प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे सहकारी बच्चे। शिव बाबा कहते आत्मरम में तुम ये सारे बच्चे हो, और ब्रह्मा क्या कहते हैं? तुम सब मेरे सहकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छी छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देवताएं तो पवित्र बन गए, क्या मेहनत करेंगे? शूद्र जानते ही नहीं तो क्या करेंगे, वो तो केवल भक्ति करेंगे। तो बाबा कहते हैं देवताओं को शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए? करनी पड़ती है कि नहीं है? पुरुषार्थ के लिए व्यक्तिगत करना है, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ भक्ति मार्ग से और हर चीज सहज है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा सा युग, बहुत छोटा है, जो जानते ही नहीं लोग। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इसको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते ही नहीं है, ये लीप युग है। बाबा कहते इसको कोई जानते नहीं है। बाप को भी तो मेहनत लगती है ना, ऐसी नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती। मेहनत में बच्चों का ही मेन रोल है, बच्चे पवित्र बने, बच्चे पुरुषार्थ करें, बच्चे संपन्न बने, तब तो जाकर के बनेगी ना। बाबा भी देखते हैं बच्चों के पुरुषार्थ को, इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए बाप भी ऐसी नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है, जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे, गुल गुल समझते ना फूल, नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है, गुल गुल क्या बनती है, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही, अच्छे कर्म भी सीख रही है और अच्छे कर्म भी कर रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल गुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहे, फूल बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे घर में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। नंबर वार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते फिर क्या होता है, नई दुनिया की स्थापना होती। तो बाबा कहते जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। वह भी कैसे होता है, अब दूसरी बात बाबा ने बताई, छांट छूट कर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है कि जो सतयुग में जाने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली इधर हो जाएंगे, जो कलयुग में है, जो द्वापर से आने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली परमधाम में जाकर के अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगे, कोई इसको करना नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते ऑटोमेटिकली छांट छूट हो जाती है, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छांट छूट कर तमो प्रधान जो भी है वह खत्म हो जाते, खत्म ही शरीर खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी छींची खत्म हो जाएंगे तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। कितनी बड़ी राजयुक्त बात कि जब भ्रष्टाचारी छींची सब खत्म हो जाएंगे तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक अदली बदली होती रहती, आना जाना ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जब कोई छींची नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा, मैं जब कोई भी पतित नहीं रहेगा तो बाबा कहते ये भी राजयुक्त बता रहे तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी तो पहले रहेंगे ना, श्री कृष्ण को जन्म देने वाले, उसको रिसीव करने वाले, उसके साथ सखा सखी सब पहले से होंगे। तो बाबा कहते हैं तो श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी तो पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। जब श्री कृष्ण के माँ बाप होंगे और भी होंगे, औरों को जन्म देने वाले, श्री कृष्ण के सखा सखी को जन्म देने वाले, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबके संग बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। बाकी चले जाएंगे तब ही उसको स्वर्ग कहा जाता। श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो थोड़ा बड़ा हुआ और फिर उसके बाद जो पहले वाले हैं वो आत्माएं चली जाती हैं, फिर जाकर के स्वर्ग कहे आएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। अब कौन रहेगा, श्री कृष्ण को देखने वाला है, अब जिसका ड्रामा में पार्ट होगा वो रहेंगे और कोई तो श्री कृष्ण के साथ भी आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, बाकी चले जाएंगे तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। भल तुम्हारा भी छींची जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, जो श्री कृष्ण को जन्म देंगे या उसके साथ ही होंगे उनके जो माँ बाप होंगे वो योग बल से नहीं पैदा हुए ना, तो जन्म देते उनको सब 21 स्वर्ग की स्थापना होती फिर वो चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे नए रोल में। तो बाबा कहते हैं तभी उनको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले होगे जब सब तुम छी चले जाएंगे, क्योंकि उस समय रावण राज्य है ना, शूद्र जन्म तो हो न सके, गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता बाबा, क्योंकि पहला नंबर का प्रिंस है ना, तो बाबा राज बता रहे गुल गुल श्री कृष्ण का जन्म पहले नंबर का ही होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से बहुत बाला है, वैसे भी जहाँ जन्माष्टमी पे झांकियां बनाते यशोदा अफसर नंदलाल सब बैठे हैं, लेकिन सब प्यार किसको करते हैं, श्री कृष्ण को करते। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से और सबसे बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है, माँ बाप श्री कृष्ण के पहले जिनका जन्म होता है वह योग बल से नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप या उनकी राजधानी स्थापन में जो भी पहले होंगे, उनका कोई जन्म योग बल से नहीं होता है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम बहुत ही बाला होता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं, अगर उनका ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो सिर है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन श्री कृष्ण की भेंट जितना तो नहीं किया ना, तो जन्म देंगे लेकिन नाम होगा श्री कृष्ण का, उनके माँ बाप का थोड़ा बहुत गायन रहेगा, इतना नाम बाला नहीं होगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाए, बाबा कहते हैं इन बातों में मूंझना नहीं है। कई कहते ये कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कई लोग क्या करते हैं बाबा की मुरली की पॉइंट को भूल करके इन बातों पे बहुत विचार संमंथन करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख करके भेजते रहते हैं, क्या क्या यूट्यूब में भेजते हैं। बाबा कहते इन बातों में बच्चों को नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि अपना पुरुषार्थ करना है, और आगे चल करके सब कुछ समझते जाएंगे तो इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। कोई कहेगा जन्म कैसे लिया, कब लिया, सेकंड जन्म कौन सा, पता नहीं कितनी लंबी कहानियां लिख लिख करके भेजते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में फिर ढीलापन हो जाता है। तो बाबा इस बात के लिए हमेशा ध्यान खिंचवाते हैं, बाबा केवल शॉर्ट में बताते हैं कि क्या क्या होगा, इन्फॉर्मेशन है, बाकी रियलिटी तो आगे चल करके समझेंगे और आगे चल करके नए रोल में जाकर के नियर पूरी रियलिटी को यूज भी करेंगे, देखेंगे भी ना। तो बाबा कहते हैं तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण भी हैं। कृष्ण अकेला तो नहीं होगा, और दूसरे माँ बाप राधे को भी जन्म देंगे। दो तीन दिन पहले, एक दो दिन पहले बाबा ने कहा ना कि दुनिया नहीं जानती, राधे जो थी वो अलग राजधानी की थी, श्री कृष्ण अलग राजधानी का था, तो उनको भी जन्म देने वाले होंगे ना, तो साथ में सखा सखी कौन होंगे बताओ, कौन होंगे श्री कृष्ण के सखा सखी कौन होंगे, जो भी हाथ खड़ा करो ना, तो आप भी तो वही होंगे ना, सभी होंगे, बोलो है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें आगे चल तो समझते जाएंगे, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं, पाप आत्मा सब खत्म हो जाते, पाप आत्मा मीन्स उनके शरीर खत्म हो जाते हैं, परम धाम में चली जाती, तब उनका जन्म होता है। राधे कृष्ण का जन्म कब होगा, जब पाप आत्मा सब चली जाएंगे, फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है, माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहे, साक्षात्कार में एकदम जैसे क्लियर सामने आता जाएगा, टाइम तो पड़ा है ना, तुम किसको भी समझा सकते हो, हम ये बनने के लिए पढ़ रहे। क्या बनने के लिए? देवी देवता बनने के लिए। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए ना। पढ़ रहे हैं, पवन बन रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? नई दुनिया चाहिए ना। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है, याद से ही विकर्माजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं, बाबा क्या है, बच्चों के बच्चे आते थे ना, तो बाबा बच्चों को पिकनिक कराते थे। पिकनिक अभी बाबा हिस्ट्री हॉल के अंदर कराते थे, गर्मियों के टाइम पर, शाम के टाइम हिस्ट्री हॉल की छत पर। आपने बाबा के कई पुराने फोटो देखे होंगे, बाबा भी नीचे बैठे हैं, सभी ब्राह्मण ऐसे आगे, बाबा मम्मा सब इधर तरफ भी, भाई बहने एक तरफ, बहने एक तरफ भाई, ऐसे लाइन लगी होती थी। बाबा पिकनिक पर बैठते थे तो बच्चों को भी पिकनिक कराते थे, और बच्चों को लगता था कि हमने बाबा के साथ भोजन स्वीकार कराया तो बहुत खुशी होती थी। बाबा कहते थे पिकनिक करने से पहले, बाबा पहले बोलते, जैसे पिकनिक की प्लेट मिली तो बाबा कहते थे बच्चे शिव बाबा को याद करो, फिर कहेंगे शिव बाबा को याद करके भोजन या पिकनिक प्लेट स्वीकार करो। जब तक बाबा नहीं बोलते थे तब तक वो पड़ा रहता था, कोई बैठ के खा ले ऐसा नहीं था। बाबा बोलेंगे, पहले योग में बिठाएंगे, तब जाकर के वो खाना शुरू करते। अभी क्या करते हैं, बहुत लाडले है ना, पिकनिक प्लेट मिली, हर एक इंडिविजुअल बाबा को याद कर लेगा, इकट्ठे करके बैठ के करे वो नहीं। बाबा के टाइम पर सबके सब इकट्ठे बैठ के करके बाबा कहते थे, और बाबा के साथ मम्मा के साथ जब ब्रह्म भोजन स्वीकार करते थे, बाबा और मम्मा कहते थे हमें याद है कि हमने भी बाबा के साथ भी खाया, फिर दादियों के साथ भी, दादियां भी बैठती थी तो दादियां हमेशा कहती थी सब शिव बाबा को याद करके ब्रह्म भोजन स्वीकार करो। तो बाबा वही बता रहे हैं, बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है, याद से विकर्माजीत बने हैं। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। अब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात रहे कर रहे, अगर मैं याद नहीं करूंगा तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशुक बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है, याद से ही आत्मा पावन होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हो तो सारा ज्ञान बह जाता। पवित्र बन करके इतनी कमाई जमा की, फिर थोड़ा सा भी गलत काम किया तो जो जमा की कमाई ये सब खत्म हो जाती है। पवित्रता ही मुख्य है, बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं है, और जो भी सत्संग है ये सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को कर्ण, और वही करते हैं और पुकारते रहते हैं ना, तुम्हारे में भी कितनों में ताकत रहती है, घर बैठे तुमको कितना सुख मिलता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो, और वो ताकत आधा क्लब तो चलती है और पूरे क्लब में भी वो मदद करती है। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो, सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, द्वापर से सन्यासी बहुत ताकत थी उनके अंदर, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वह ताकत नहीं, वो ताकत वो इनके अंदर प्योरिटी थी तो अभी तो इतनी नहीं है ना। तो तुम जैसे तुम्हारे में भी पहले बहुत सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह सब खत्म हो रही है, अब वह सब ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। बाप समझाती है इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापिस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको ये पता नहीं, बाबा कहती सबको तो जाना ही है ना, एक भी नहीं जिसको ये पता नहीं कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो फिर हम इसे रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें ही अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। आत्मा क्या करती है, पार्ट भरा हुआ है, ये सब बातें समझने के लिए बाबा कहते बुद्धि अच्छी और बड़ी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त होंगे, सिवाय मेहनत के पद थोड़ी मिलेगा। दुनिया में भी अगर कोई मेहनत नहीं करता है तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं, और मेहनत करते हैं तब तो स्टेटस मिलता है ना। तो बाबा कहती सिवाय मेहनत के पद थोड़ी मिलेगा, इसलिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है, चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकनाच। मेहनत करेंगे तो उठ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे रास्ते चलते मेहनत छोड़ देती है तो फिर पुरुषार्थ में ढीले होने से नेचुरली अवस्था नीचे आ जाती है। तो बाबा कहती इसलिए गाया जाता है कि चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकनाचूर, कहां ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज और कहां प्रजा, कहां राजा महाराजा, डबल सिरताज और कहां प्रजा, तो कितना अंतर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, पढ़ने वाले सब एक ही पढ़ाई पढ़ते, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है ना, कहां महाराजा विश्व महाराजन, कहां प्रजा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को यही है, बाबा कहते यही है याद की यात्रा मुख्य। बाबा बार बार समझाते हैं कि क्या है मुख्य, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो टीचर गुरु भी तो होगा ना। बाबा भी हैं, टीचर भी है और गुरु है। बच्चे अडॉप्ट करते हैं, पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते हैं और गुरु बन करके साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो टीचर और गुरु भी होगा, बाप तो है ही, कौन है, टीचर्स का टीचर, सभी टीचर, दुनिया के भी टीचर और ब्राह्मण परिवार में जितने टीचर्स हैं उनका भी, टीचर्स का भी टीचर कौन है, बाबा है। बापों का भी बाप है, टीचर्स का टीचर भी है, बापों का भी बाप है और गुरुओं का भी सतगुरु है। तो टीचर्स का टीचर, बापों का बाप, ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमारा क्या है, बोलो, बाबा हमारा बहुत प्यारा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे को बहुत प्यारे, बहुत लाडले हो। तो बाबा बच्चे भी कहते हैं बाबा हमारा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। इतना बड़ा वर्षा देते हैं तो बाबा के तो याद भी करना है, बाबा को प्यार भी करना है, लेकिन प्यार की निशानी क्या है? पढ़ना पूरा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर आदि सब खत्म हो जाएंगे, आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करते। लास्ट में बाबा ने बच्चों को कितना प्यार किया, और बच्चों को क्या करना है, बाबा को भी बहुत प्यार करना है, याद करना है, और पढ़ाई भी पूरी पढ़नी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे तब विकर्मा जीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है, अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज का वरदान, अपनी रूहानी लाइफ्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइफ्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो वही वातावरण हो जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया, अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है, लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है, जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती तो आप लाइट हाउस बन भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। फिर से पढ़ती हूँ, तो आप लाइट हाउस में पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं और रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। फिर स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और स्वयं के प्रति, स्वयं और सर्व के प्रति, अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्त कर लेना, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कम खर्च वाला नशीन, कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्त कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम संकल्प से कम खर्च करो। समय भी खजाना है, संकल्प कम करके कम संकल्प से कम खर्च करो, लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला मशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100% गुना हो या अधिक हो। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो, इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। योग का प्रयोग है कम संकल्प प्राप्ति अधिक, कम खर्च वाला नशील। यही बाबा कहती है योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद फिर डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको आज सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक। टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस। ओम शांति।